ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे कृष्ण लीला प्रवचन में। कल हमने चर्चा की भगवान माता यशोदा के कीर्तन को सुनकर, उनकी सेवा को देखकर स्वयं सोए हुए भगवान उठकर अब जा रहे हैं माता यशोदा के पास, और उन्होंने अपना सबसे पहला ऐश्वर्य परित्याग किया। कौन सा ऐश्वर्य परित्याग किया? आत्माराम भगवान को कहते हैं। भगवान आत्मसंतुष्ट है। भगवान को बाहर से कोई वस्तु अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं कि कौन सी वस्तु के पीछे वो कामना कर रहे हैं। दूध के पीछे। तो वास्तविक रूप में वो दूध की कामना नहीं कर रहे थे, वास्तविक रूप में वो कामना कर रहे थे माता यशोदा के प्रेम की। वो दूध के रूप में माता यशोदा का प्रेम उनकी कामना कर रहे थे, और इसीलिए वो अपना ऐश्वर्य त्यागना चाहते थे कि यदि ये ऐश्वर्य बीच में आ रहा है, यदि कोई ये कह दे कि आप आत्माराम हैं, तो ये दूध या माता यशोदा का प्रेम भी आपके अंदर समाये हुए हैं, तो क्या आवश्यकता है आपको उठकर कहीं पर जाने की। और कर्म की परिभाषा हमने कल सुनी कि हम लोग कर्मों में लगे रहते हैं क्योंकि अपूर्ण हैं, और उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमें चेष्टा करनी पड़ती है। क्या कुछ नहीं करना पड़ता केवल इस शरीर का यापन करने के लिए, केवल ये सांस चलती रहे, हर दिन ये सांस चलती रहे, इसके लिए व्यक्ति को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कितना कठोर परिश्रम एक मनुष्य करता है आज के इस भौतिक समाज में, केवल दो वक्त की रोटी खाने के लिए, एक जगह सोने के लिए और सर के ऊपर छत, इसके लिए कितना कठोर परिश्रम मनुष्य कर रहा है। और इससे समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है भगवान की तुलना में। और कई बार ऐसे मनुष्य कठोर परिश्रम करते करते अपने आप को भगवान कह बैठते हैं कि बस पिछले हफ्ते बैंक में क्लर्क थे और अब इस हफ्ते भगवान बन गए। ये कौन से शास्त्र में, कौन से भगवान के अवतार में इस प्रकार से कहा गया है कि वो बैंक के क्लर्क थे और उसके पश्चात फिर वो भगवान हो गए और अपने सारे भगवत्ता दिखाने लगे। परंतु यहां पर भगवान, देखिए कि भगवान जो कि अपना पूरा ऐश्वर्य दिखा सकते हैं, पूर्ण ऐश्वर्यशाली हैं भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण, परंतु भगवान जब देखते हैं कि मेरे जो भक्त मुझे अपना दास मानते हैं, स्वयं अपने आप को वो भगवान का दास मानते हैं, तो ये जो मेरे भक्त हैं इनके वश में यदि मैं रहूं तो यही मेरे आनंद का स्रोत है। हमारे आनंद के स्रोत हैं भगवान, और भगवान ये जानते हैं कि उनकी आनंद के स्रोत हैं उनके भक्त। इसलिए उठकर वो जा रहे हैं माता यशोदा का स्तनपान करने के लिए, और स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं। उठकर स्वयं गए, वो जो मंथन का दंड था वो स्वयं रोके और स्वयं गोद के ऊपर चढ़े और स्वयं ही स्तनपान शुरू किया। देखिए हमें तो भगवान के लिए जब ऑफरिंग लगाना होता है तो बताया गया है कि चेतना शुद्ध होनी चाहिए, जो भी खाद्य पदार्थ हम पका रहे हैं वो सब शुद्ध होना चाहिए, और जिसके ऊपर भगवान को भोग चढ़ाया जाए वो थाली साफ सुथरी होनी चाहिए, और इतने सारे मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं, और केवल मंत्रोच्चारण केवल जिह्वा से नहीं बल्कि मन से। जब तक मन से वो सारे मंत्रोच्चारण न हो, इसलिए भगवान कहे हैं कि भक्ति से जो कोई अर्पित करता है वो मैं स्वीकार करता हूं, अश्नामी वो मैं खाता हूं। तो इतना सब कुछ करना पड़ता है और पता नहीं भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं वो हमारा ऑफरिंग। और यहां पर माता यशोदा का सौभाग्य देखिए कि स्वयं दौड़े चले जा रहे हैं ऑफरिंग। माता यशोदा ऐसा नहीं कि दूध को कोई कटोरा में डालकर या फिर उसे उबालकर इस प्रकार से अर्पित कर रही, स्वयं भगवान दौड़कर छीन रहे हैं, ये माता यशोदा का सौभाग्य। इसलिए माता यशोदा अब वो बहुत ही प्रसन्न हो गई, क्योंकि ये एक लक्षण है कि जब शिशु अपनी माता का स्तनपान करता है तो ये उसके स्वास्थ्य का लक्षण होता है कि बच्चा स्वस्थ है। और एक लीला में भगवान श्री कृष्ण का स्वास्थ्य इसी प्रकार से माता यशोदा ने परखा। कोई जानता है कौन सी लीला में? नहीं, पूतना वध। जब भगवान पूतना का वध किए तो सभी गोपियां चिंतित केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में थी, अपने विषय में कोई चिंता नहीं कि इतनी बड़ी ये राक्षसी अब तक छटपटा रही है, एक हाथ भी यदि यहां फेंक दे तो कई 10-20 मार के वो मरेगी। तो गोपियों को खुद का कोई भय नहीं, खुद की कोई चिंता नहीं, केवल सारी गोपियां माता यशोदा को लेकर वो देख रही हैं कि ये छोटा सा कृष्ण, ये ऊपर इतना बड़ा विकराल ये शरीर पूतना का, इतने बड़े विकराल शरीर के ऊपर ये 6 दिन का शिशु, ये 6 दिन का शिशु, इसकी क्या हालत हो रही होगी। तो तुरंत वो चढ़ गए पूतना के शरीर के ऊपर और तुरंत भगवान को नीचे उतारा, और भगवान भी क्रीडंतम अकुटो भयम्, भगवान भी क्रीड़ा कर रहे हैं बिल्कुल अकुटो भयम्, अभय होकर, क्योंकि भगवान ये सोच रहे थे कि सबसे पहला खेलने का मैदान, इतना बड़ा 8 मील लंबा खेलने का मैदान देखो कंस ने भेजा है, मेरे मामा ने भेजा है, तो कुछ आदान प्रदान होना चाहिए मामा के साथ। तो इसलिए भगवान क्रीडंतम अकुटो भयम् खेल रहे हैं पूतना के शरीर के ऊपर। तो माता यशोदा और रोहिणी तुरंत ऊपर चढ़कर कृष्ण को नीचे लाती हैं, और सबसे पहले फर्स्ट एड मेजर, वृंदावन का सबसे फर्स्ट एड मेजर क्या है? गो माता। कि गो माता को लाया गया और गोपुच्छ भ्रमणादि भी, गोमूत्र, गोबर, गोरज, इन सब से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की सुरक्षा प्रदान की गई। और फिर अंततः माता यशोदा भगवान को लेकर स्तनपान कराना शुरू की, और ये परखना था कि अब कृष्ण स्वस्थ है कि नहीं। तो भगवान जब स्तनपान शुरू किए, अब पहले से ही भगवान ने इतना स्तनपान कर लिया था पूतना का कि न केवल दूध बल्कि विष और उसके साथ साथ उसके प्राण, इतना सब कुछ पी लिया भगवान ने। तो हो सकता है कि इतना सब कुछ कोई बच्चा पी ले, 6 दिन का बच्चा, तो अब आगे क्या पिएगा वो? परंतु भगवान देख रहे हैं कि माता यशोदा स्तनपान करा रही, तो कभी वो ऐसा नहीं कि अब नहीं पीना, क्योंकि माता यशोदा का स्तनपान उनका कृष्ण प्रेम। तो भगवान तुरंत स्तनपान करने लगे और फिर सभी निश्चिंत हुए कि जो शिशु है वो स्वस्थ है। तो यहां पर भी माता यशोदा, सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर उल्लेख कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। वो कहते हैं हरि, भगवान श्री कृष्ण को हरि कह रहे हैं यहां पर, हरि न्यसेधात, कि माता यशोदा कृष्ण को हरि के रूप में देख रही हैं। देखिए भगवान के सारे जो नाम हैं, भगवान के नाम के पीछे भगवान के गुण हैं और भगवान की लीलाएं हैं। तो भगवान को जब हरि कहा जा रहा है तो भगवान के गुणों को दर्शाया जा रहा है। कौन से गुण को? जो मन को हर ले वो है हरि, मनोहर, ये भी नाम है भगवान का। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी मानो माता यशोदा क्या सोच रही हैं कृष्ण को देखते हुए, वो माता यशोदा का मनोभाव इन श्लोकों में दे रहे हैं भागवत के। हरि न्यसेदत, कि माता यशोदा भगवान को अब उनके मनोहर रूप में देख रही हैं। अब देखिए भगवान अभी अभी जगे हैं। इस संसार में देखा जाता है कि जो व्यक्ति जगता है, जगते सबसे बदसूरत तभी दिखता है वो। यदि किसी व्यक्ति की असली सूरत देखनी है तो जैसे ही वो जगे तब देखना चाहिए। ये बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होते हैं इनकी फोटो खींचनी चाहिए जब जगते हैं ये, तो पता लगेगा कि कितने सुंदर हैं। और उसके पश्चात क्या क्या ऊपर थोप लेते हैं ये वो, और फिर वो जो तथाकथित जो सुंदरता है वो फिर फोटो में दिखाई जाती है, पिक्चरों में दिखाई जाती है। तो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जब सुबह सुबह उठता है तो बहुत भद्दा दिखता है, और इसीलिए लोग जो है बाथरूमों में आईना लगाते हैं कि वो जो भद्दापन है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो यदि कोई देख लेगा, यदि घर के सदस्य भी देख लेंगे, यदि पत्नी देख लेगी या पति देख लेंगे, तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा आज के दिन। तो और उसके पश्चात फिर दिन बहुत बुरा गुजरता है कई बार इस कलयुग में, क्योंकि सबसे पहले खुद का ही भद्दा चेहरा देखते हैं हम। और केवल दिखने में नहीं बल्कि उठते सो हमें सबसे पहले ये शरीर को साफ करना पड़ता है, सारे जो नौ छिद्र हैं उनको साफ करना पड़ता है, नहीं तो बदबू, ये हमारा शरीर बना हुआ है केवल बदबू से, दुर्गंध से। यदि सबसे पहले ये मुंह साफ न करें तो यदि किसी से भी बात करना प्रारंभ करें तो हो सकता है तीन चार लोगों को मार कर फिर आगे का दिन बढ़ाएंगे। ये हमारी स्थिति है मनुष्यों की। देखिए जानवर भी उठते सो इतने भद्दे नहीं दिखते, और जानवर भी कोई मंजन इत्यादि नहीं करते उठते ही। ऐसा नहीं कि जानवर उठे हैं तो अब लाओ ब्रश लाओ और कहां है वो मंजन लाओ और घिसना शुरू किए, कुत्ते बिल्ली इत्यादि कोई नहीं करता, क्योंकि वो एक प्रकार से एक प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। और हालांकि वही जानवर पशु जब शहर में रहना प्रारंभ करते हैं तो अप्राकृतिक जीवन प्रारंभ हो जाता है, कृत्रिम जीवन। तो उसमें उन्हें भी वो कृत्रिम बीमारियां चढ़ जाती है, परंतु जो मनुष्य समाज में है देखा गया है कि बहुत कृत्रिम उपाय लगाने पड़ते हैं इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, परंतु भगवान ऐसा नहीं। अभी अभी उठे हैं और ऐसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं कर रहे कि भगवान उठते ही सबसे पहले मंजन किए हैं और नहाए धोए हैं, साबुन लगाए, कुछ सेंट वेंट लगाकर फिर माता यशोदा के पास आए। ऐसे ही वहां से उठे, पालने से उठकर तुरंत माता यशोदा के पास, और सुखदेव गोस्वामी यहां पर वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हरि, कि ये भगवान उठते ही हरि प्रतीत हुए माता यशोदा को, मनोहर प्रतीत हुए, हरेक उनकी क्रिया मनोहर माता यशोदा को प्रतीत हो रही थी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सस्मितम इक्षति, कि माता यशोदा सस्मितम, स्मित हास्य, हंसने लगी माता यशोदा, मुस्कुराने लगी और आनंद से मुस्कुराने लगी, और भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी जब कहते हैं सस्मितम इक्षित, इसका अर्थ है कि दोनों मां बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण यशोदा मई को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और यशोदा मई कृष्ण को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो यशोदा मई क्यों मुस्कुरा रही थी? क्योंकि यशोदा मई ने देखा कि स्तनपान कर रहा है, बच्चा निरोग है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं बच्चे में, तो ये जानकर माता यशोदा मुस्कुरा रही थी। और कृष्ण, उनके मुस्कुराने का प्रयोजन बहुत था। सबसे पहले कृष्ण सोच रहे थे कि आज सुबह सुबह जिस कार्य के लिए मैं निकला वो कार्य सिद्ध हुआ। जब व्यक्ति सुबह सुबह कोई कार्य सिद्ध कर लेता है, हम मनुष्य समाज में तो यदि शौच ठीक से हो जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, आज का कार्य सिद्ध हुआ, ये हमारी दशा है। परंतु भगवान यहां निकले कौन से कार्य को सिद्ध करने के लिए? माता यशोदा का स्तनपान करने के लिए। तो इस कार्य के लिए भगवान निकले तो भगवान सबसे पहले इस कार्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो मंथन का दंड था उसे रोका और वो रुक गया। वो सबसे पहले कार्य उन्हें सिद्ध करना था कि माता यशोदा का ध्यान आकर्षित करना है, तो माता यशोदा का ध्यान आकर्षित करने के लिए दंड को रोकना है, तो वो कार्य सिद्ध हुआ, तो ध्यान आकर्षित हुआ, तो ये कार्य सिद्ध हुआ दूसरा कार्य, और उसके पश्चात उनके गोद में चढ़ना है, तो माता यशोदा गोद में चढ़ाने से पहले भगवान अपना एक पैर मटके पर, बायां हाथ उनकी साड़ी पकड़कर और फिर गोद पर चढ़े, तो ये तीसरा कार्य सिद्ध किया। चौथा कार्य उनका सिद्ध हुआ, अपने आप स्वयं उन्होंने माता यशोदा का स्तनपान शुरू किया, इसमें वो सफल रहे। और फिर माता यशोदा का जो दूध था उसका स्वाद, उसका तो क्या कहना, तो दूध इतना स्वादिष्ट। तो ये सारे कार्य जब सफल हुए तो भगवान श्री कृष्ण अब बस, उन्होंने तो अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर ली, मानो अब भगवान को इसके ऊपर और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान अब आत्माराम हुए कि ये सब कुछ कार्य सिद्ध करने के पश्चात अब भगवान सोचने लगे कि अब मुझे आत्माराम कहना चाहिए किसी को, क्योंकि अब माता यशोदा का ये जो प्रेम है ये प्रेम मुझे मिल चुका है। और माता यशोदा, अब उनके वात्सल्य प्रेम के विषय में कहा गया है कि ये जो दृश्य है, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ये स्तनपान कर रहे हैं और माता यशोदा सस्मितम मुखाम्बोजम, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए वो मुस्कुरा रही है, तो ये जो दृश्य है ये वात्सल्य प्रेम की सबसे विकसित स्थिति है। इससे विकसित स्थिति वात्सल्य प्रेम की नहीं हो सकती। तो यहां तक अब दोनों बेटे और मां मुस्कुरा रहे हैं इस लीला में। आगे बहुत कुछ होने वाला है, परंतु अब तक लीला में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हालांकि पूरी लीला में केवल प्रेम का ही आदान प्रदान चल रहा, परंतु यहां पर इस स्थिति में, लीला की इस स्थिति में मुस्कुराने का आदान प्रदान है। आगे चलकर क्रोध का आदान प्रदान होगा, भय का आदान प्रदान होगा, बहुत अलग अलग भावनाओं का आदान प्रदान होगा। तो इस दामोदर लीला में भगवान एक ही लीला में देखिए प्रेम का, क्रोध का, भय का, इन सब का आदान प्रदान माता यशोदा के साथ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये वात्सल्य रस भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से रखते हैं। जैसे कि वर्णन आता है कि भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध के पश्चात जब द्वारका आए तो भगवान कितने वर्ष के थे? 125 वर्ष के थे भगवान। आजकल तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति 125 वर्ष का है और है। यदि कोई होगा भी तो पता भी नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति जिंदा है या क्या हो रहा है। केवल हो सकता है कि सांसें कुछ यहां वहां, कुछ वो मीटर में रीडिंग दिखा रही होंगी बस खाली। परंतु यहां पर भगवान 125 वर्ष के, पर उनकी इनकी इनकी छवि कैसी थी? नव यौवनम च, 16 वर्ष की तरह भगवान। तो भगवान जब द्वारका पहुंचे तो देवकी ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, बहुत समय पश्चात अब दर्शन हो रहा था भगवान का, तो माता देवकी 125 वर्षीय अपने पुत्र को देखकर उनके स्तनों से दूध निकलने लगा। यह वात्सल्य प्रेम देखिए माता देवकी का। तो यहां पर माता देवकी का वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है, और सुखदेव गोस्वामी वात्सल्य प्रेम की तुलना करते हुए बताते हैं कि अरे भाई, यदि पूतना को भगवान इतना वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं कि पूतना आई विष लेकर मारने के लिए और भगवान स्तनपान कर रहे हैं पूतना जैसी राक्षसी का, और पूतना कैसी राक्षसी थी, सुखदेव गोस्वामी इसका पहले वर्णन करते हैं और उसके पश्चात तुलना करते हैं उन गोपियों की, विशेष रूप से यशोदा मई की। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वापि सदगतिम। सबसे पहले तो पूतना वो एक राक्षसी थी, कि उसकी पैदाइश एक राक्षसी परिवार में, और पूरा परिवार जो है वो इस बिजनेस में था। कौन कौन था पूतना के परिवार में, कोई जानता है? अघासुर और बकासुर, ये दोनों भाई पूतना के, और इनका भी रक्षाबंधन होता था, परंतु एकमात्र उद्देश्य क्या होता था कि कैसे कृष्ण को मारना है। कल्पना कीजिए, अघासुर और बकासुर कौन सी राखी बांधते होंगे पूतना को। तो मतलब फैमिली बिजनेस, पूरा फैमिली बिजनेस था कृष्ण को मारने का। तो पैदाइशी राक्षसी है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसका जन्म हुआ राक्षस परिवार में। और देखिए कि हमने उस दिन चर्चा की कि हम सब जन्मे हैं इस कलयुग में शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, परंतु संस्कार से द्विज या विप्र या ब्राह्मण कोई व्यक्ति बन सकता है। तो पूतना हालांकि जन्मी राक्षसी परिवार में, परंतु अपने कर्मों के द्वारा तो सुधर सकती थी वो, परंतु नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके कर्म भी उसे सुधार नहीं रहे थे, क्योंकि कौन से कर्मों में लगी थी? बालघ्नी बालकों को मारने के कर्म में लगी थी। अभी राक्षस भी जो होते हैं वो बड़े लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, बालकों की हत्या नहीं करते। तो राक्षसों में भी ये शेड्यूल कास्ट थी। राक्षसों में भी सबसे निचले दर्जे की, कि राक्षस भी बालकों को, कंस भी बालक को नहीं मार, वो जो गर्भ हत्या उसने नहीं की थी, हालांकि पैदा होने के बाद उसने मारा, परंतु गर्भ हत्या नहीं की थी। तो इसलिए आजकल देखिए जो गर्भ हत्या करते हैं वो पूतना भी गर्भ हत्या नहीं की थी, पूतना भी उन्हीं बालकों को मारती थी जो बालक पैदा हो गए थे। तो आजकल ये जो गर्भ हत्या चल रही है ये कंस और पूतना से भी अधम लोग हैं ये जो करते हैं, ये जानना चाहिए। तो पैदाइशी राक्षसी और उसके पश्चात कर्म क्या है कि बालकों की हत्या, बालघ्नि। और केवल वो बालकों की हत्या कर छोड़ नहीं देती थी उन्हें, रुधिर आसन उनके रक्त का पान करती थी ये पूतना। ये तीसरा दुर्गुण इस पूतना का, पहला दुर्गुण राक्षस कुल में उसका जन्म, दूसरा दुर्गुण उसके कर्म की बालकों की हत्या, तीसरा दुर्गुण हत्या करने के पश्चात रुधिर आसन उनके रक्त का पान करना। और फिर सबसे बड़ा दुर्गुण कि अब ऐसे बालक की हत्या करने आई, जिघाम सयापी हरये, भगवान श्री हरि जो कि अपने बालक रूप में इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे सबको कि कोई देखने मात्र से ही अपना सर्वस्व श्री बाल गोपाल को अर्पित कर दे, इतने सुंदर भगवान अपने बाल रूप में दिख रहे थे। परंतु ये राक्षसी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को मारने के लिए वहां पर पहुंची, और कपट से, ऐसा नहीं कि सामने राक्षस बनकर आई, कपट से मारने के लिए। तो ये सारे दुर्गुण सुखदेव गोस्वामी पहले बता रहे हैं ताकि परीक्षित महाराज और हम सब समझ जाएं कि भगवान की कृपा कितनी हुई। इसलिए जब उद्धव उन्होंने जब ये लीला सुनी भगवान की तो वो इस लीला को समझ नहीं पाए, और बहुत से आचार्य समझ नहीं पाए हैं कि भगवान ने पूतना को क्यों चुनाव किया इतनी कृपा देने के लिए। अहो बकीयम स्थन काल कूटम जिघाम शया पायदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उद्धव जी कहते हैं कम वा दयालुम, कि भाई इससे अधिक दयालु और कौन व्यक्ति हो सकता है, कि यहां पर ये पूतना इतने सारे दुर्गुण लेकर कपट को लेकर कृष्ण को मारने के लिए पहुंची और भगवान ने धातृचितम, भगवान ने, और देखिए पूतना मारने के लिए इस प्रकार से आई कि ऐसा नहीं, योजना भी ऐसी की थी पूतना ने कि अपने स्तनों पर विष लगाया था। देखिए कि जो प्रतीक होते हैं किसी शिशु के जीवन के लिए, माता के जो स्तन होते हैं शिशु के जीवन के प्रतीक होते हैं, और उसी प्रतीक को विष लगाकर मारने के लिए, ये कपट पूतना का देखिए। और इस प्रकार से मारने के लिए ताकि कोई भी संशय न कर पाए, बल्कि गुणगान करे कि देखो ये कैसी माता है कि दूसरे के शिशु को स्तनपान करा रही, इससे अधिक कृपालु और कौन सी स्त्री हो सकती है। तो केवल उसने ये सब नहीं किया, बल्कि माता यशोदा भगवान के भक्तों के मन में, उनके मन में ये भ्रम डाला। परंतु भगवान इतने कृपालु कि भगवान केवल एक ही गुण देख रहे थे पूतना का, कि ये कुछ देने आई है, कुछ देने आई है, चाहे वो विष ही सही, कुछ तो देने आई है। तो इससे भगवान ये दर्शा रहे हैं कि हम लोग जो इस कलयुग में हैं, हम कुछ ना कुछ दे भगवान को। इसीलिए भगवान गीता में जब ये कहे हैं कि मुझसे सब कुछ उद्धृत हो रहा है और मैं ही सबका जीवन यापन कर रहा हूं, तो कई घमंडी सोचने लगे कि अरे भाई ये कौन है जो अपने आप को सर्वस्व कह रहा है और उनसे ही सब कुछ उद्धृत हो रहा है, क्या हम सक्षम नहीं हैं जो कुछ हमें चाहिए वो यहां पर इकट्ठा करने के। तो भगवान ने जब देखा कि बहुत से लोग इस प्रकार से घमंडी हैं, वो सोचते हैं कि वही देने योग्य है, तो भगवान ने कह दिया ठीक है तुम दो, फिर मुझे दो, मुझे कुछ दो। यदि तुम अपने आप को बहुत दानवीर कहते हो, यत करोषी यत अश्नाशी यत जुहोस ददाति, मुझे दो। तो भगवान इनको भी सेवा में लगाना चाहते हैं कि जो घमंड में हैं और भगवान से कुछ लेना नहीं चाहते, इतना घमंड है कि क्या हम उनसे लेंगे और क्या देंगे वो, और हैं कि नहीं। तो भगवान ने कहा यदि इतना घमंड है किसी के अंदर, इतना अहंकार, तो ठीक है दो मुझे कुछ, तो देने से वो शुद्ध होगा। तो यहां पर भगवान दिखा रहे हैं कि यदि हम अपने आप को केवल एक साधारण नैतिक व्यक्ति मानते हैं कि बहुत मैं मॉरल व्यक्ति हूं, मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल अपना सत्यवादी बनकर रहूंगा और मेरा जो सत्यवाद है वही उत्कृष्ट अध्यात्म है मेरा, और इससे उत्कृष्ट अध्यात्म और कुछ नहीं जो नैतिकता का मैं पालन कर रहा हूं। परंतु भगवान यहां पर दिखा रहे हैं कि वो तथाकथित नैतिकता पूतना से भी नीची है, कि पूतना कुछ ना कुछ देने आई भगवान को, विष ही सही परंतु देने आई। तो चेतना कुछ ना कुछ देने की होनी चाहिए जब हम भगवान के पास आते हैं। तो यदि पूतना जो कि विष देने आई, और यहां पर सुखदेव गोस्वामी ये भी अचरज कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज अब इस स्थिति में है कि परीक्षित महाराज सोचने लगे कि मुझे भी श्राप मिला है, तक्षक के विष से मेरी हत्या होनी है। तो ये जो विष है, जहर है, इससे अब परीक्षित महाराज काफी वाकिफ हो गए थे। तो इसलिए परीक्षित महाराज, क्योंकि स्वयं अब ये बीतने वाली है उनके अंदर, तो थोड़ा चिंता में लग गए कि पूतना विष लेकर, और कैसा विष था, दुर्जर वीर्य उल्बणम, ऐसा विष पूतना लगाकर आई थी कि यदि उस विष को कोई अधरों पर यदि स्पर्श भी करे, अंदर भी न डाले, केवल होठों को स्पर्श भी करे तो व्यक्ति मर जाए, दुर्जर, ऐसा दुर्जर विष लेकर वो आई थी। आजकल कलयुग के विष तो काम भी नहीं करते। हमें याद है कि जिस जगह पर हम पले बड़े, उस जगह पर एक लड़की वो फेल हो गई थी, 10th में फेल हो गई, तो इतनी दुखी हो गई। अब एक कॉलोनी में सब लोग रह रहे हैं, तो सभी लोग पूछते रहते, अरे तुम्हारे बेटे का क्या रिजल्ट निकला भाई, कितना परसेंटेज मिला। और कई बार इस प्रकार से व्यंग्यात्मक दृष्टि से पूछा जाता है जब एक समाज में रहते हैं, तो तब कैसे लोगों को अपना मुंह दिखाएगी ये कि फेल हो गई, अब क्या कहे। तो इसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। तो अब आत्महत्या कैसे, कोई उसका प्रैक्टिस तो किया नहीं कभी आत्महत्या करने का। तो घर पर देखा कि कॉकरोचों को मारने के लिए वो बेगोन स्प्रे इस्तेमाल किया जाता था, तो बेगोन स्प्रे पी लेंगे तो जैसे कॉकरोच मर जाते हैं वैसे हम भी मर जाएंगे। तो उसने पूरा वो डब्बा बेगोन स्प्रे का पी लिया, गड़गड़ कर कर पी लिया पूरा बेगौन स्प्रे का डब्बा और कुछ नहीं हुआ उसे, केवल कुछ उल्टियां हुई और उल्टी होते ही सारा बेगौन स्प्रे बाहर। और हो सकता है वो किसी कॉकरोच ने चख लिया तो वो मर गया होगा। वो सारा बेगौन स्प्रे बाहर निकल गया, हॉस्पिटल में ले गए उसे और बस कुछ घंटों पश्चात फिर से, तो अब ज्यादा नाम खराब हुआ। पहले तो केवल इतना ही नाम खराब हुआ था कि फेल हुई है, अब ज्यादा नाम खराब हुआ कि फेल होने के बाद बेगौन स्प्रे खाया और मरी भी नहीं। तो नाम खराब हुआ खुद का और बेगौन स्प्रे का कि ये सालों ने क्या बनाया है कंपनियों ने कि कोई मरता भी नहीं। तो पूतना कोई ऐसा बेगौन स्प्रे लगाकर नहीं आई थी कि जिससे कुछ असर न हो, इसलिए कंस ने जाकर पूछ लिया कि अरे भाई क्या, कौन सा विष लगाकर, कौन से कंपनी का विष था कि कुछ हुआ नहीं कृष्ण को। दुर्जर उलबणम, उलबणम का अर्थ है कि अधरों पर केवल स्पर्श करने मात्र से कोई व्यक्ति मर जाए, ऐसा विष। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहां पर, और इसलिए परीक्षित महाराज वो चिंतित थे क्योंकि अब इतने से छह दिन के भगवान और इतना दुर्जर विष को स्पर्श किए हैं और पिए जा रहे हैं, तो परीक्षित महाराज आतुर हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब देखा कि वो जब पूतना की लीला सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, और जब ये स्थिति आ गई कि अब भगवान पिए जा रहे हैं, तो परीक्षित महाराज इतने आतुर हो गए चिंता के कारण, कृष्ण के विषय में चिंता कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चिंता मत करो, ये भगवान हैं जिन्होंने शिवजी को आदेश दिया था विष पीने के लिए जब समुद्र मंथन चल रहा था। तो शिवजी जो कि एक अंश है भगवान के अंशों के अंशों के अंश हैं शिवजी, वो स्वयं एक वैष्णव हैं, उन्होंने जो हलाहल विष पिया समुद्र मंथन की लीला में, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका गुणगान हो गया नीलकंठ के नाम से उनका गुणगान हुआ विष पीने से, तो ये जो कि स्रोत हैं उनके, इनको क्या होगा। तो परीक्षित चिंता मत करो, यहां पर कहानी का हैप्पी एंडिंग होने वाला है। कई बार लोग जब पिक्चर देखने जाते हैं तो उन्हें वो पिक्चर में हैप्पी एंडिंग चाहिए। हमें याद है पहले एक ऐसा सिनेमा निकला था जिसमें जो हीरो हीरोइन सभी लोग इतने उनके पीछे पागल कि अब ये लोग प्रेम के संबंध में मिले हैं और विच्छेद हुआ और अंत में मारे गए, तो वो सभी ने इतना विरोध किया कि इतनी सुंदर सिनेमा बनाई परंतु इसमें वो हीरो हीरोइन को मारा क्यों अंत में। तो वो जो उसका प्रोड्यूसर था, उसका डायरेक्टर था, उसको कोर्ट में ले गए और कहा कि इसका स्टोरी चेंज करो। तो उसका उसे कहानी चेंज करना पड़ा कि वो फिर वो अंत में मरते नहीं, हां अब ठीक है। ये देखियो इस कलयुग का भ्रम, कलयुग की माया देखिए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते चिंता मत करो, वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्तनम दत्वाप सदगति, पूतना को सदगति मिलने वाली। अरे कृष्ण तो चिंता छोड़ दो, यहां पर पूतना की सदगति होने वाली है। कई बार चिंता ऐसी होती है कि यदि पूतना इतने कपट से गए मारने के लिए तो पता नहीं अब कृष्ण क्या करेंगे, कैसे पटक पटक कर मारेंगे इस पूतना को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे पूतना की सदगति, और ऐसी सदगति मिली पूतना को धातृचितम, कि भगवान अपनी धात्री का पद दिए, अपनी माता का पद दिए, और गोलोक वृंदावन में, ऐसा नहीं कि कोई वैकुंठ लोक में भेज दिया है, कि जाओ वहां जाकर कुछ दासी बनकर कुछ सेवा करो या बाहर वैकुंठ के बाहर खड़े रहना झाड़ू पोता मारते हुए। पूतना को श्री गोलोक वृंदावन धाम में निवास मिला। यहां पर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन धाम की एक झलक भी मिल जाए, और यहां पर पूतना विष लेकर आई और उसे गोलोक वृंदावन धाम में माता यशोदा की निजी सेविका, और श्री वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवान की जो अंतिम लीला मौशल लीला में भगवान अब उसके पश्चात अब अपने धाम फिर से जा रहे थे, तो जो वो व्याध था जिसने वो बाण मारा, क्या नाम था उसका, जरा, उसने जो बाण मारा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे के ऊपर वो बाण लगा, तो जैसे एक छोटा सा बालक जब उसे कुछ चोट पहुंचती है तो किसे पुकारता है, मां को पुकारता है, तो भगवान हालांकि 125 वर्ष के जब वो बाण लगा तो भगवान मां को पुकारे, और तीन स्त्रियां उपस्थित हो गई तुरंत, एक माता देवकी, एक यशोदा और तीसरी पूतना। ये सदगति मिली पूतना को कि भगवान जब मां कर पुकार रहे हैं तो तीनों में से एक पूतना है जो वहां पर उपस्थित हो रही है। स्तनम दत्वा पर सदगति, इससे अधिक सदगति क्या हो सकती है, कमवा दयालुम, इनसे अधिक दयालु और कौन से भगवान हो सकते हैं, शरणम व्रजम, और यदि कोई व्यक्ति इनकी शरण ग्रहण नहीं कर रहा तो वो अव्वल नंबर का मूर्ख सबसे बड़े नंबर का मूर्ख व्यक्ति वही है जो इन भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहा। तो इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किम्नु रक्तस्तन मातरो यथा। वो कहते हैं किम, अब क्या कहूं मैं, और किसके विषय में, श्रद्धया भक्त्या, उन भक्तों के विषय में अब मैं और क्या कहूं, कितने हद तक उनका गुणगान करूं मैं, कौन से भक्त, यशोदा माई, कि मैं अब कितना गुणगान करूं यशोदा माई का, पूतना का गुणगान कर मैं थक गया हूं, तो अब यशोदा माई उनका क्या, कितना मैं गुणगान करूंगा। इसीलिए ब्रह्मा जी जब उन्होंने जब देखा भगवान पूतना के ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं और बकासुर अघासुर पूरे परिवार के ऊपर इतनी कृपा, अघासुर को भी मुक्ति मिली, अघासुर भी अघासुर का की भी जो आत्मा है वो बाहर आई और वो भगवान के शरीर में प्रवेश की और अघासुर को भी मुक्ति मिली और बकासुर ये सब को। तो ब्रह्मा जी ये भगवान को रोक रहे कि भगवान आप इतनी कृपा मत बरसाओ, क्योंकि यदि आप पूरे परिवारों का उद्धार कर रहे हो इस प्रकार से तो आपके अकाउंट में कुछ नहीं रहेगा, कृपा के अकाउंट में आपका जो कृपा का अकाउंट है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि यदि पूतना अघासुर बकासुर ये आसुरी परिवार को इतनी कृपा आप दे रहे हो तो ये ब्रजवासी जो इतने प्रेम से सब कुछ अर्पित कर रहे हैं तो पता नहीं ये तो क्या कुछ नहीं ले जाएंगे आपके अकाउंट से, पूरा ब्लैंक चेक देना पड़ेगा आपको, ब्रजवासियों के लिए तो ब्लैंक चेक देना पड़ेगा। जैसे कि सुदामा ब्राह्मण, जब सुदामा ब्राह्मण वो चीड़ा लेकर गए, पोहा लेकर गए, तो वो दिखा नहीं रहे थे भगवान को कि क्या लाए हैं, क्योंकि द्वारका का इतना सारा ऐश्वर्य देखकर वो सोचे कि अब ये मेरी गंदी पोटली में से ये साधारण एक चिड़ा मैं बाहर निकालूंगा तो खिल्ली उड़ेगी मेरी यहां पर। इतना ऐश्वर्यशाली द्वारका का महल भगवान का, सब रत्नों से सुसज्जित और संगमरमर और हस्तदांत और ये सब से बना हुआ सब कुछ। तो सुदामा वो सोचने लगी कि नहीं, ये मैं यहां पर नहीं निकाल सकता। तो भगवान छीन लिए, जानते हैं भगवान, भगवान छीन लिए और भगवान फिर उसे खाने लगे। और भगवान उसे खा रहे थे उस समय, भगवान के भोजन का समय था। तो द्वारका में जब भगवान भोजन लेते तो केवल 56 भोग नहीं, 56 के 56 के 56 के 56 भोग चढ़ते भगवान को। और वो भी कौन ये सारे भोग, सत्यभामा रुक्मिणी ये सब कोई भगवान को भोग चढ़ाती। और यहां पर भगवान ये सब कुछ छोड़कर सुदामा, और वो भी सुदामा अपने घर से वो नहीं लाए थे, अपनी पत्नी को भेजा था भीख मांगने के लिए, दूसरों के घरों से भीख मांग मांग कर लाए थे। तो देखिए भगवान ये दर्शा रहे थे कि भक्त सुदामा जैसे, वो जिनके घरों से भीख मांग कर लाए उस चिड़ा को, उन घरों का भी उद्धार हो गया। कि वो ये नहीं जानते थे कि ये जो वो दे रहे हैं भिक्षा, ये जाकर भगवान को चढ़ने वाली है। तो यदि कोई व्यक्ति दान भी दे और पता भी नहीं कि दान कहां जाने वाला है, और यदि वो कृष्ण के चरणों में चढ़ जाए, देखिए भगवान को भोग चढ़ाने की इतना गुणगान इसका किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक पुष्प चढ़ाए भगवान को, भोग पत्रम पुष्पम भगवान ने कहा कि एक पुष्प यदि चढ़ाए तो सबसे पहले वो जो पुष्प जाति है वो पुष्प जाति का उद्धार हो गया। और जिस किसान ने वो पुष्प लगाया उस किसान का उद्धार हो गया, उसके परिवार का उद्धार हो गया। ये भगवान की कृपा, हे कृष्ण करुणा सिंधु, इसलिए उन्हें करुणा सिंधु कहा गया है कि एक फूल चढ़ा, और जो फूल चढ़ा रहा है उसका क्या कहना। तो जो फूल चढ़ा रहा है उसका उद्धार, फूल का उद्धार, और जिस किसान ने वो फूल लगाया उस किसान का उद्धार। और यदि हम कलयुग में देखें, वो फूल का बीज यदि यहां वहां कोई ट्रांसपोर्ट कर पता नहीं कहां से वो घूम घाम कर, तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है यदि वो जितेंद्र ट्रांसपोर्ट हो तो क्या कहने, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का उद्धार हो सकता है। और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनका उद्धार, और वो जो ट्रक जिसने बनाई हो उनका उद्धार, ट्रक का जो टायर बनाया वो रबर कंपनी का उद्धार, और उसके अंदर जो पेट्रोल है वो ऑयल कंपनी का उद्धार। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पुष्प, ये नहीं समझना चाहिए कि अरे आज मैं भगवान को पुष्प नहीं अर्पित करता क्योंकि दिख नहीं रहा कहां पर पुष्प। हम यदि एक पुष्प भी भगवान को अर्पित करते हैं तो ये सारे पीछे जो लाइन में खड़े हैं इस पुष्प को भगवान तक पहुंचाने के लिए इन सब का उद्धार हो रहा है। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। तो यहां पर अब ब्रह्मा जी भ्रमित हो रहे हैं, हम सुदामा की कथा में थे। तो सुदामा, उन्होंने भगवान ने जब छीन कर उनके वो चिड़ा ले लिया, और यहां पर रुक्मिणी सत्यभामा वो सब भगवान का प्लेट बनाए हुए रेडी हैं, और यहां भगवान एक घास दो घास तीन घास खाए जा रहे खाए जा रहे। तो अब रुक्मिणी देवी वो देख रही हैं, तो वो सोच रही हैं कि अरे भाई ये कितना खाएंगे। और सभी को लग रहा है क्योंकि द्वारका के आलीशान महल में ये साधारण सा एक खाद्य पदार्थ, और भगवान वो जो पोटली सुदामा जो जिस पोटली में बांध कर लाए थे वो पोटली में भी कुछ इतने अनगिनत छिद्र थे, और एकदम पुराना कोई कपड़ा सा था उसमें से भगवान खा रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी आकर भगवान का हाथ पकड़ ली, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं खाना, मुझसे सहन नहीं होगा। क्योंकि रुक्मिणी देवी स्वयं वो भाग्य देवी है, तो जो भी भक्त भगवान को कुछ अर्पित करता है तो उसका सौभाग्य उजला बनाती है रुक्मिणी देवी। इसलिए वो हालांकि लक्ष्मी जो है तो वो सोच रही है कि भगवान एक एक जो घास खा रहे हैं उसका बिल मुझे भरना पड़ेगा। क्योंकि भगवान किसी से भी कुछ ग्रहण करते हैं तो उसके भाग्य का उदय मैं ही करती हूं, तो भगवान स्वयं जो एक एक घास खा रहे हैं उसका बहुत लंबा चौड़ा बिल बन रहा है, और मेरे पास इतना खजाना नहीं भाग्य का कि सुदामा को मैं इतना सब कुछ दे दूं एक ही व्यक्ति को। तो इसलिए रुक्मिणी देवी रोक रही हैं कि यहां पर मैं बैंकरप्ट हो रही हूं। तो यहां पर इसी बात को दर्शा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, किम पुनः श्रद्धया भक्तिया, कि अब और मैं क्या कहूं इनके विषय में, यशोदा मई के विषय में क्या कहूं कि जो रक्तस्तन मातरो यथा यच्छन प्रियतमम किमनु, कि इतने प्रेम से वो भगवान श्री कृष्ण को अपना स्तनपान रोज कराती। मेरे पास और कोई वाक्य नहीं है इसे बताने के लिए, बस इतना समझ लो कि यदि पूतना को भगवान ऐसी सदगति दे सकते हैं तो यदि कल्पना कर सको तो कर लेना यशोदा मई के भाग्य के विषय में, नहीं तो आगे चलते कथा आगे बढ़ाते। तो ये मनोभाव सुखदेव गोस्वामी का, और ये यशोदा मई का सौभाग्य। तो इसीलिए सस्मितम इक्षति, यशोदा मई वो हंस रही मुस्कुरा रही है और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और ये सब कुछ मुस्कुराने की लीला चल रही है। अब बीच में योग माया ने सोचा कि यदि ये लोग मुस्कुराते रहेंगे एक दूसरे को देखकर, क्योंकि दोनों अनगिनत हैं, माता यशोदा का प्रेम अनगिनत है, असीमित है, कोई सीमा नहीं, और भगवान श्री कृष्ण वो तो असीमित हैं ही, तो यदि भक्त असीमित प्रेम लेकर असीमित भगवान के साथ असीमित भक्ति करे तो असीमित काल तक चलता रहेगा, तो फिर हम आगे कैसे कथा बढ़ाएंगे। तो हमारी कथा वहीं पर रुक जाएगी कि भाई यशोदा माई हंस रही है मुस्कुरा रही है, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, यशोदा माई अपना स्तनपान करा रही है, कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं, हरे कृष्णा, बस कथा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, या इसी को इसी वाक्य को कहते रहना पड़ेगा 7 दिन तक। तो इसलिए योग माया ने क्या किया कि रसोई घर में जो माता यशोदा ने दूध रखा था उबालने के लिए, और वो कौन सा दूध था, पद्मगंधा दूध, ये विशेष उत्कृष्ट दर्जे का दूध माता यशोदा ने रसोई घर में उबालने के लिए इसके ऊपर रखा, आग अग्नि के ऊपर रखा था, अंगीठी के ऊपर। तो वहां पर यशोदा मई को इसकी गंध आई कि वो जो दूध है वो उफन रहा है, तो अब माता यशोदा तुरंत भगवान को नीचे रखे और दौड़ते हुए गई उस दूध को संभालने के लिए। तो अब देखिए सनातन गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर बात यहां पर उद्धृत करते हैं कि माता यशोदा कृष्ण को लेकर क्यों नहीं गई, अरे हल्के से तो थे कृष्ण, लेकर जा सकती थी, भगवान को लेकर जाती तो इतना सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ उखल लीला दाम बंधन और नल कोर मणि ग्रीव और वो सारे यमल अर्जुन वृक्ष नीचे गिरना, ये सब कुछ नहीं होता। परंतु सनातन गोस्वामी वो भी जानते हैं कि ये सब यदि लीला नहीं होती तो हम लोग क्या करते, क्या करते, टीवी देखते खाली। तो हम लोग टीवी बंद कर कर यहां आए इसलिए माता यशोदा भगवान को वहां पर छोड़कर दूध को देखने के लिए, संभालने के लिए वहां पर गई। और कई बार स्थिति ऐसी है कि भगवान इतनी लीला की फिर भी टीवी बंद नहीं होता, फिर भी टीवी चालू रहता है। तो सनातन गोस्वामी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान हल्के से थे कि क्यों नहीं माता यशोदा उठाकर ले गई। तो वही उत्तर देते हैं सनातन गोस्वामी, उत्तर देते हैं। सबसे पहला कारण था कि माता यशोदा वो सोच रही थी कि यदि मैं कृष्ण को उठाकर अंदर ले जाऊंगी तो अब उफन रहा है दूध, तो दोनों हाथों से दूध को उठाना होगा। तो यदि कृष्ण को अपने गोद में रखे हुए दोनों हाथों से गर्म दूध को उठाऊंगी तो कृष्ण को चोट पहुंच सकती है। तो सबसे पहला कारण था कृष्ण के रक्षा हेतु, कि कृष्ण की रक्षा बाहर अच्छी तरीके से होगी, इसलिए माता यशोदा ने छोड़ा। और दूसरा कारण यह था कि जो सेवा के लिए मैं जा रही हूं वो सेवा मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगी, तो वो सेवा ठीक से हो इसीलिए भगवान को रखकर भगवान की ही सेवा ठीक से हो, इसलिए वो अकेली गई वहां पर। कि यदि कृष्ण को साथ साथ ले जाएंगे तो हो सकता था कि एक हाथ से वो दूध को नीचे उतारे, परंतु एक हाथ से दूध को नीचे उतारते समय दूध गिर सकता था। तो दोनों सेवा हो जाती थी, कृष्ण को भी साथ में रखे और दूध को भी उतारे, परंतु दोनों सेवा में वो जो उत्कृष्ट दर्जे की सेवा नहीं हो पाती, माता यशोदा ये सोच रही थी। इसलिए माता यशोदा ये दिखा रही है कि हम जब भगवान की सेवा में, भगवत सेवा में लगते हैं तो जिस सेवा में लगे हैं पूर्ण एकाग्रचित होकर वो सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए एक हाथ से हलवा बना रहे हैं और माला भी चल रही है दूसरे हाथ से, कि भाई आप प्रभु जी ने प्रवचन में कहा कि माता यशोदा बिलोते समय कीर्तन कर रही थी तो मैं भी अपना 16 माला माता यशोदा के पद चिन्हों में चलता हुआ हलवा बनाते हुए करूंगा, तो ये भी हलवा हिल रहा है, ये भी माला हिल रही है। तो जैसे कि एक भक्त, उन्होंने राधानाथ महाराज से यह प्रश्न पूछा कि जब मैं जप करने बैठता हूं तो जप करने जब मैं बैठता हूं तो ऐसे ऐसे सेवा मैनेजमेंट के ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं मुझे, कि मेरे बिजनेस के भी साथ साथ, परंतु भगवान की सेवा के आइडियाज ऐसे आते हैं कि वैसे आइडिया कभी नहीं आते मुझे। तो क्या जप करते समय भगवान की सेवा के लिए ये सारे आइडियाज आना ठीक है, उचित है? तो महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया इसका। उन्होंने कहा कि दोनों ये भगवान के विषय में, भगवान की सेवा के विषय में बहुत अच्छी अच्छी आइडिया आना ये भी प्रामाणिक है और भगवान का जप करना भी प्रामाणिक है, परंतु दोनों एक साथ करना ये प्रामाणिक नहीं। और उन्होंने उदाहरण दिया, ये इसके समान है कि यदि आपको कोई महाप्रसाद का समोसा लाकर दे तो महाप्रसाद का समोसा आप खाएं ये प्रामाणिक है, आप महाप्रसाद खा रहे हैं, परंतु यदि आप महाप्रसाद का समोसा आरती करते समय खाने लगे तो वो प्रामाणिक नहीं। एक हाथ से भगवान की आरती चल रही है और जो कुछ भोग चढ़ाया भगवान के लिए सामने, सोचा कि थोड़ा भगवान को हेल्प कर दूं, मैं सहायता करूं। तो एक हाथ से समोसा खा रहे हैं, एक हाथ से आरती। तो भगवान का प्रसाद खाना ये प्रामाणिक भक्ति का अंग है, परंतु वो भक्ति का हम बहुत प्रामाणिक तरीके से करते हैं हम। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हमारे प्लेट में ऐसी वस्तु नहीं है जो बगल वाले के प्लेट में है, या हमें केवल एक ही समोसा मिला, बगल वाले को दो मिल गया, तो फिर अरे प्रभु थोड़ा महाप्रसाद दिया करो अपना। और फिर छीन के प्रभु जी का महाप्रसाद ले लिया, महाप्रसाद लिया है, समोसा नहीं महाप्रसाद। तो फिर दूसरे दिन जब करेला की सब्जी बनती है, तो फिर यदि हमारे प्लेट में ज्यादा गिर गई तो आजकल मेरा महाप्रसाद कोई ले नहीं रहा। तो फिर हम परम दानवीर बन जाते हैं कि अपना महाप्रसाद करेला का सब्जी बांटना शुरू करते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि समोसा खाना ये प्रामाणिक है, भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद वो खाना प्रामाणिक है, परंतु आरती के समय नहीं। तो इसलिए माता यशोदा ने भी यही सोचा कि मैं जो भी भगवत सेवा करूं वो प्रामाणिक तरीके से करूं, इसलिए भगवान को रख कर वो। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की जो भी सेवाएं होती हैं, वो सारी सेवाओं में हर एक सेवा का कुछ स्तर होता है, दर्जा होता है। जैसे कि सबसे पहला जो आदेश है गुरु का, वो शिष्य को कौन सा पालन करना चाहिए? 16 माला जप। ये सबसे पहला आदेश है गुरु का शिष्य के प्रति। और यदि व्यक्ति ये सोचे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन इसलिए शुरू किया है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत से आदेश दिए हैं अपने शिष्यों को। श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया मंदिर खोलने के लिए, पुस्तक वितरित करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया गो सेवा करने के लिए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत से आदेश प्रभुपाद जी ने दिए। तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो भ्रमित हो जाए कि कौन सा आदेश महत्वपूर्ण है, कि यदि प्रभुपाद जी ने एक बार आदेश दिया था कि जैसे प्रभुपाद जी एक बार कृष्ण बलराम मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे, और प्रदक्षिणा करते करते प्रभुपाद जी, सुबह का समय था, 6:15 बज रहे थे, तो प्रभुपाद जी तुरंत पीछे मुड़कर, सारे भक्त भी प्रभुपाद जी के पीछे जप करते हुए प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं देख सकता हूं और तुम लोग सब अंधे हो। अभी सभी एक दूसरे को देखने लगे, हम अंधे हैं? और प्रभुपाद जी आगे चले गए। और फिर जब दूसरी बार उसी जगह पर आए, प्रभुपाद जी ने फिर से कहा, मैं देख सकता हूं, सभी अंधे हैं। तो अभी सभी एक दूसरे को देखने लगे, प्रभुपाद जी जो कुछ कहते उसके पीछे गुह्य बात होती कुछ ना कुछ। तो इसके पीछे क्या गुह्य बात होगी कि प्रभुपाद जी देख सकते हैं? ओम अज्ञान तिमिरान धस्य, ये श्लोक का तो अनुवाद नहीं कर रहे प्रभुपाद जी, हम अंधे हैं। हाँ अंधे हैं, कैसे अंधे हैं, देख तो रहे हैं परंतु अंधे कैसे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो एक भक्त ने पूछ लिया, प्रभुपाद जी आपके कहने का तात्विक सिद्धांत क्या है, इसका तात्विक तात्पर्य क्या है इस सिद्धांत का कि आप देख सकते हैं हम अंधे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, वो बल्ब देखो जल रहा है, सूर्य उग चुका है और सब कुछ दिख रहा है, और ये बल्ब क्यों चालू है? क्योंकि अंधे हो इसलिए बल्ब चाहिए। तो तुरंत सभी जाकर बल्ब बंद की। अब यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया बल्ब लगाने के लिए, तो ये जो प्रभुपाद जी का आदेश बल्ब लगाना, ये मैंने अपने जीवन का एकमात्र उपदेश आदेश मान लिया है। इसलिए मैं केवल घरों में बल्ब लगाता रहता हूं। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि गुरु का कौन सा आदेश है जिसका हमें कौन से स्तर पर किस समय पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला आदेश है 16 माला जप। तो सबसे पहले 16 माला जप होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे दिन भर बल्ब लगाते फिरें और फिर 16 माला जब शुरू हुआ है, जब सारी बत्ती बुझ गई है, तो यहां पर भी माता यशोदा वो अपनी बुद्धि लगा रही। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। सुमेधसा कहा गया है कि उनकी जो मेधा बुद्धि होती है वो सुमेधसा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी एक समय ऐसा हुआ कि ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु, जब वो ज्वाइन कर लिए श्रील प्रभुपाद जी को, फुल टाइम बन गए अब ब्रह्मचारी और आगे सन्यासी, तो उनकी माता वो आ गई प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। और दोनों आए और प्रभुपाद जी को कहे, वो बहुत गुस्से में है और वो शिकायत करने आई है और ये सब। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अंदर भेजो। तो वो अंदर गई और अंदर जाकर शिकायत करने लगी, ये क्या दोनों मेरे पुत्रों को ले लिया, ये क्या आपने संस्था खोली है, मेरे दोनों पुत्रों को ले लिया, अब मैं क्या करूंगी। तो प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके ये दोनों पुत्र रास्ते में हिप्पी की तरह घूम रहे थे, कोई खाने के लिए ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, हिप्पी की तरह रास्ते में घूम रहे थे, और इन्हें मैंने शरण दी इस मंदिर में। तो यहां पर रहने की जगह दी, सोने की जगह दी, खाने के लिए इतना स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन मैं दे रहा हूं पका पका कर, तो उल्टा आपको मुझे डोनेशन देना चाहिए। निकालिए $1000 निकालिए, पिछले 6 महीने से ये लोग खा रहे हैं यहां पर, इसका सारा बिल भरिए आप। तो अब ये सोचने लगी कि अब मैं क्या कहूं, ये जो कह रहे हैं वो भी सत्य बात है कि ये सब कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, इनके रहने के लिए सब सुविधा प्रदान की है, तो ये ऊपर हजार डॉलर मांग रहे हैं ऊपर से मेरे। तो इनकी माता ने कह दिया पहले से ही मैंने दोनों पुत्र डोनेट कर दिए, वो क्या। तो प्रभुपाद जी ने कहा तो फिर शिकायत किस बात की। तो वो सोचने लगी कि मैं किस लिए आई थी यहां पर, मैं यहां पर शिकायत करने हेतु आई और मैं अपने ही वाक्यों में स्वयं कह रही हूं कि मैं डोनेट कर रही हूं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हें, धन्य हो आपके ये गुरु महाराज, धन्य हो। और बाहर निकलकर वो दोनों गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु से कहते हैं, ये जो तुम्हारे स्वामी जी हैं बहुत ही चतुर हैं। उन्होंने कहा यू आर इन सेफ हैंड्स, सुरक्षित हाथों में हो तुम लोग, ठीक है यहीं पर रहो। तो जो भक्त होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं। जैसे कि हमारे मंदिर के एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर बता रहे थे, हाल ही में वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर। तो वहां पर एक व्यक्ति को किताब दिखाई उन्होंने, छोटी सी प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक राज विद्या, 10 रुपए की पुस्तक, और वो बता रहे थे कि ये पुस्तक पढ़ने से आप अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये 10 रुपए की पुस्तक, ये 10 रुपए की पुस्तक मुझे भगवत धाम ले जाएगी। अरे यदि भगवत धाम के विषय में तुम बता रहे हो तो पुस्तक भी वैसी कुछ होनी चाहिए, बड़ी मोटी ग्रंथ, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि उठाने में तकलीफ हो, कई बार लोग ये सोचते हैं कि ऐसा ग्रंथ होना चाहिए। एक बार हम स्टॉल पर खड़े थे तो एक व्यक्ति आए, आपके पास वो ओरिजिनल ऋग्वेद है? तो मैंने पूछा किसने लिखा ऋग्वेद पता है? नहीं नहीं वो नहीं पता, परंतु आपके पास है क्या? ये पता नहीं ऋग्वेद लिखा किसने, और यदि मैं जो भी थमा दूं हाथ में, स्टारडस्ट भी थमा दूं, ये लो ओरिजिनल ऋग्वेद। तो मूर्ख ऐसे समझ में नहीं आता, परंतु ओरिजिनल ऋग्वेद मांगेंगे। तो ये व्यक्ति ने कहा कि ग्रंथ ऐसा होना चाहिए, भगवत धाम ले जाने के लिए ऐसा ग्रंथ होना चाहिए कि पकड़ने में लगे कि हाँ कोई ग्रंथ पकड़ा है। सब बड़ा लंबा चौड़ा इतना मोटा होना, ये इतनी सी 10 रुपए की पुस्तक। तो ये भक्त, इन्होंने पूछा कि आप बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर क्यों, कहां जा रहे हैं क्या? कहा हाँ मैं दिल्ली की ट्रेन पकड़ रहा हूं। तो उन्होंने पूछा दिल्ली की ट्रेन पकड़ रहे हैं तो टिकट तो होगी आपके पास? हाँ भाई बिना टिकट नहीं जाता मैं। तो इन भक्त ने पूछा ठीक है आपकी टिकट दिखाई। तो भाई तुम टिकट कलेक्टर कब से बन गए? नहीं नहीं आपके हाथ में ही रखिए दिखाइए क्या। तो उन्होंने टिकट निकाली तो भक्त ने ली उनके हाथ से। ये इतनी सी, इतना सा पन्ना कागज का, ये आपको दिल्ली ले जाएगा? तो सोचने लगा, वो कहा कि हाँ कितने की किताब, लाओ इधर लाओ। केवल एक ही वाक्य कहने से कि यदि ये इतना सा कागज का टुकड़ा तुम्हें बंबई से दिल्ली ले जा सकता है, या छोटा सा कागज का टुकड़ा इस देश से विदेश किसी को ले जा सकता है, तो क्यों नहीं ये छोटी सी पुस्तिका व्यक्ति को भगवत धाम ले जा सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। प्रभुपाद जी ये कहा करते थे बंगाली में कि जो कृष्ण को भजता है वो बड़ो चतुर। और हम कह सकते हैं जे कृष्ण त्यजे से बड़ो कुकुर। कुकुर कहते कुत्ते को। कि यदि जो कृष्ण को भज रहा है बड़ा चतुर, और यदि कृष्ण को किसी ने त्याग दिया है तो भाई बाकी की 84 लाख योनियां ही बाकी है फिर। तो भगवान के भक्त, इसलिए माता यशोदा ये दिखा रही हैं कि मेरा तो दूध हर समय उपलब्ध है भगवान के लिए, या मेरे बालक के लिए, मेरे शिशु के लिए, मेरा स्तनों का दूध तो हर समय उपलब्ध है, परंतु ये दूध यदि उफन कर गिर जाए तो फिर और जो मैं सेवा करना चाहती हूं मेरे बालक के लिए वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए चतुराई लगाकर माता यशोदा ने कृष्ण को छोड़कर वहां पर उस दूध को संभालने गई। अब दूध अंदर वो क्या सोच रहा था, क्योंकि सभी वहां पर चिदगण है, कोई जड़ वस्तु नहीं है। तो पद्मगंधा दूध अंदर वो सोच रहा है, वो गर्म होते हुए सोच रहा है कि बाहर ये माता यशोदा वो अपना स्तनों का दूध पिला रही है, और माता यशोदा के स्तनों का दूध है माता यशोदा के हृदय का प्रेम जो कि असीमित है, और भगवान असीमित हैं। तो माता यशोदा का प्रेम असीमित, माता यशोदा के स्तनों का दूध असीमित, कृष्ण असीमित, तो असीमित काल तक ये चलता रहेगा। तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा? तो वो दूध अंदर, पद्मगंधा दूध सोच रहा था कि मैं जल जल कर तपस्या कर रहा हूं ताकि कृष्ण की सेवा में मैं आ सकूं, और यहां पर केवल जलना ही लिखा है शायद, तो क्यों ना मैं वास्तविक रूप में जल जाऊं। तो ये दूध इस प्रकार से सोचते हुए अपने आप को ऊपर कर अग्नि में आत्महत्या करने नीचे उतर रहा था। ये दूध सोच रहा था, आत्महत्या। तो माता यशोदा उस दूध की आत्महत्या को बचाने के लिए भागी अंदर। तो यहां पर अब देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माता यशोदा जैसे ही भागी उस दूध को बचाने के लिए, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण वो एक अपने दूसरे ऐश्वर्य को दिखाकर और उसका परित्याग करने लगे। और ये था भगवान को कहते हैं आप्तकाम। आप्तकाम का अर्थ है कि भगवान छोटे से बहुत ही तुच्छ ऑफरिंग से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आप्तकाम कहा गया है कि केवल एक पत्र, एक पुष्प, यही केवल एक छोटा सा देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु भगवान असंतुष्ट हो गए, अतृप्तम। सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं अतृप्तम उत्सृज्य, कि वो आप्तकाम अतृप्ति दिखा रहे हैं। और उन्होंने ये अतृप्ति कैसे दिखाई, इसकी चर्चा हम करेंगे कल, क्योंकि हमें सुझाव दिया गया था कि जल्दी शुरू कर प्रवचन जल्दी खत्म कीजिए, तो इसलिए हम 7:30 बजे शुरू किए थे, तो ठीक 9 बज गए हैं, तो 9 बजे हम आज की कथा को विराम देंगे। और कल भगवान किस प्रकार से जो आप्तकाम हैं वो अतृप्त रहे, उन्होंने ये कैसे दर्शाया, इसकी चर्चा हम करेंगे कल। और कल का प्रवचन होगा सौजन्य मंगलो। कल सैटरडे, अच्छा सोमवार को, ओहो ठीक, कल का प्रवचन यही। और ठीक 7:30 बजे हम शुरू करेंगे, तो जो भक्त बहुत कुछ आज मिस कर चुके हैं, यदि आप उसे खोना नहीं चाहते, कथा को पूरी सुनना चाहते हैं, तो ठीक 7:30 बजे यहां पर उपस्थित हो जाए, क्योंकि 7:30 बजे यहां पर प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदी।